श्री स्वामी धनुधर महाराज इज प्रेजेंट हियर एंड नाउ ही विल स्पीक समथिंग अबाउट अवर गुरुदेव देन आई विल टेल
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति प्रज्ञानके वस्तवन्ति अतिमत्तचरित्राय स्वार्षितानां च पालिने जीवति सदार्थाय नाम प्रेम प्रदान वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो नमो महाबदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्विषे
अभी हमारे कृष्ण बलराम मंदिर के धनुर्धर स्वामी जी ने अंग्रेजी में कुछ कहा, मैं उसका हिंदी में अनुवाद कर देता हूँ। इन्होंने बतलाया कि इनके गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी प्रभुपाद के शिष्य थे। उनके आदेश में पाश्चात्य देशों में प्रचार करने के लिए महाप्रभु जी की वाणी उन्होंने भेजा। वो वहाँ गए थे अमेरिका में। उस समय में धीरे धीरे इनका प्रचार बढ़ रहा था। मैंने यहाँ से एक पत्र दिया था उनको, टेलीग्राम, कि हमारे गुरुजी अप्रकट हो गए हैं। उनको वो मिला तो बड़े दुखी हुए और उन्होंने अपने शिष्यों को सबको बुला करके एक मीटिंग की, जिसको हम लोग बिरह सभा कहते हैं। तो हम लोगों ने जिस दिन बिरह सभा नवद्वीप धाम में की, उसी समय में वहाँ पर उन लोगों ने और स्वामी जी ने एक बिरह सभा की, जिसमें अभी इस कोण के जो बड़े बड़े प्राचीन अभी जो हैं कमाल कृष्ण स्वामी और सब लोग ब्रह्मानंद और सब लोगों का सबको बुला करके एक मीटिंग की और उसमें जो रिजोल्यूशन पास हुआ उसको कॉपी हमारे पास में उन्होंने भेज दी। तो ये कह रहे हैं कि वो उस दिन स्वामी जी ने, भक्ति वेदांत स्वामी जी ने, जो कि पाश्चात्य देश में हरे कृष्ण मूवमेंट को चलाया, उन्होंने एक वंदना की। वंदना मैंने वो वंदना थी सनातन गोस्वामी की, वंदना रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने विलाप कुसुमांजलि में या किसी ग्रंथ में उन्होंने की है। सनातन गोस्वामी के लिए वो वंदना की गई। उसमें वंदना में कहते हैं, वैराग्य युग भक्ति रसम प्रयत्नई अपायन मान अनुभिक्ष मंदम कृपाम्बुदरिज पर दुख दुखी सनातनस्तम प्रभु माश्रयामी। रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं सनातन गोस्वामी के लिए, ओहो सनातन गोस्वामी जैसा कृपा का समुद्र हमने कहीं भी नहीं देखा न सुना। वो कृपा की मूर्ति थे और समुद्र थे अगार। हम कृपा उनकी नहीं चाहते थे, किंतु जोर कर हमें कृपा हमारे मुख में ढाल दिया और जब तक मैं निगल नहीं गया तब तक हमारे मुंह को बंद रखा। जैसे कोई जानवर हो, जानवर को कोई रोग हो जाता है, बछड़े इत्यादि को, तो उसे कड़वी नीम की पत्ती पीस कर उसे पिलाते हैं, तो वो पीना नहीं चाहता क्योंकि कड़वा है। इसलिए बांस के नालियों में उसे भर कर रस और उसको मुँह का पकड़ करके ऊंचा करके उसके अंदर में दे दी और जब तक कि घट घट वो पी नहीं जाता तब तक उसको पकड़ करके रखते हैं। ऐसे ही हम लोग भगवान की कृपा नहीं चाहते, हम लोग विषय चाहते हैं, विष पीना चाहते हैं, अमृत पीना नहीं चाहते। भगवान की सेवा ही, सेवा और भगवान का प्रेम ही जगत के जीवों के लिए परम उपकारी है, किंतु हम इसको पीना नहीं चाहते, भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। सनातन गोस्वामी कृपा के समुद्र हैं, कृपाम्बुद विजय पर दुख दुखी, दूसरों के दुख में बड़े दुखी होते हैं। हम लोग नहीं समझते, कैसे नहीं दुखी समझते हैं। एक बर था, बर माने आजकल विवाह शादियां खूब जोर से हो रही है धूम धड़ाके के साथ, तो वो पालकी में बैठ करके विवाह करने गया और विवाह करके अपनी पत्नी को लेकर के, दुल्हन को लेकर के वो आ रहा था, वो भी एक अलग पालकी में थी। आभूषणों से कपड़ों से सजी हुई दुल्हन और ये दूल्हा दोनों आ रहे थे। एक महात्मा वहां पर बैठे थे, महात्मा जी ने कहा, महात्मा जी ने कृपा करके कहा, देखो तो ऐसा कोई मूर्ख होता है, अपना पैसा दे करके नागिन को खरीद लिया और खरीद करके ला रहा है और अपने गले में हार के समान नागिन को पहनता है, तो ये नागिन तो डसेगी और ये मरेगा। तो जगत में ऐसे मूर्ख लोग होते हैं जो अपना सर्वस्व दे करके पैसा और सब कुछ और बीस खरीद करके, नागिन खरीद करके लाते हैं जो कि गले में उसको काटेगी कब। वो सुन रहा था, वो सुन करके आकर के इनको प्रणाम किया और कह दिया अपनी दुल्हन को और कहारों को, जैसे इसको ले जाओ इसके पिता के घर में दे आओ, मैं पैसा दे करके नागिन खरीदूंगा, मैं नहीं खरीदता। ये है कृपा, और उस कृपा को उन्होंने पा लिया और उनका नाम हो गया रामचंद्र, भक्तों में श्रेष्ठ रामचंद्र कविराज बने। और इनके गुरुजी का नाम था श्रीवास पंडित, श्रीनिवास। तो इन्होंने ऐसे मालूम होता है इसके विवाह को उन्होंने चौपट कर दिया, उसका संसार नष्ट कर दिया ऊपर से। किंतु हुआ क्या, उन्होंने लाखों लोगों को तार दिया, अपने तो तरह ही लाखों लोगों को तार दिया। ये है वैराग्य युग भक्ति रसम, भगवान की भक्ति वैराग्य युग है। वैराग्य युग माने क्या, जब तक वैराग्य पूर्ण रूप से संसार से नहीं होगा तब तक सर ये रसपूर्ण भक्ति जो राधा कृष्ण की वृंदावन लीला का है ये कभी भी नहीं प्राप्त हो सका, नहीं हो सकता। इसलिए सनातन गोस्वामी स्वयं वैराग्यवान है और वैराग्य से युक्त भक्ति रस को देने वाले हैं जीवों को। हम लेना नहीं चाहते, वो जरूर दे करके ही रहेंगे, यही उनकी महान करुणा है। क्यों, क्योंकि करुणा के सागर है। ऐसे सनातन गोस्वामी की मैं वंदना करता हूँ। महाराज जी ने हमारे गुरु जी के लिए ये प्रार्थना की, सनातन जी का नाम वहाँ से हटा करके उनके बदले में हमारे गुरु जी का नाम रख दिया है। उन्होंने कहा वैराग्य युग भक्ति रसम प्रयत्न अपायन मान अनुभिप समंदम कृपाम्बुदरिजा पर दुख दुखी श्री केशव, हाँ उनको मैं सनातनम उनको वंदना करता हूँ। तो इन्होंने हम उसके बदले में केशव गोस्वामी महाराज जी की मैं वंदना करता हूँ जिन्होंने हमको वैराग्य युग भक्ति की शिक्षा दी। मैं संन्यास ले लेना ना चाहता था, मैं भजन नहीं करना चाहता था, उन्होंने जोर जबरदस्ती पकड़ करके हमको संन्यास दे दिया और संन्यास दे करके उसके साथ में वैराग्य से युक्त भक्ति रसम को दे करके और यहाँ पर मैं आया हूँ उसी का प्रचार करने के। ऐसे ये लोग परम कृपालु हैं, वो लेना नहीं चाहते और हमारे गुरु जी ने प्रभुपाद ने कहा तुमको लेना चाहिए, इस प्रकार से भक्ति को देकर उनका उपकार। तो ऐसे इनकी गुरु जी ने वंदना की, उसी का ये स्मरण कर रहे थे। आज हम लोगों के नित्य लीला प्रविष्ट उष्ण भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी का आविर्भाव तिथि है। गुरु के गुरु अपने जन्मदिन में अपने गुरु से आरंभ करके और कृष्ण तक जितने भी प्रधान प्रधान भागवत आचार्य हुए हैं उनकी सब पूजा करता है। आज के दिन हमारे गुरु जी जब हम लोग आए तो पहले वर्ष चुचुड़ा में समस्त वैष्णवों को बुलाया और अपने जन्म के दिन में समस्त वैष्णवों और अपने गुरु जी की अपने परम गुरु जी परात्पर गुरु जी यहाँ तक कि माधवेंद्र कुरिपाद से ऊपर तक कृष्ण तक ब्रह्मा नारद इत्यादि समस्त गुरुओं को की पूजा उन्होंने की। ये होता है गुरु पूजा का दिन व्यास पूजा अपने जन्म तिथि में ऐसा लोग करते हैं आचार्य लोग। आजकल कुछ रिवाज कुछ उल्टा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो समझते हैं कि हमारे जन्म के दिन में जितने हमारे शिष्य लोग हैं और सब लोग हैं हमारी पूजा करें, ये पूजा का उद्देश्य नहीं। गुरु अपने जन्म के दिन में भगवान की कृपा प्रार्थना करने के लिए शक्ति संचरित करवाने के लिए समस्त अपने गुरु वर्गों की पूजा करते हैं, ये यथार्थ में व्यास पूजा है और उनके शिष्य लोग उनकी पूजा करेंगे, नहीं तो परंपरा नहीं रहेगी, इसलिए उनके शिष्य लोग भी उनकी पूजा किया करते हैं और करना भी चाहिए। चैतन्य भागवत में हम लोग देखते हैं सब जितने चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि कल व्यास पूजा है, कल व्यास पूजा होनी चाहिए। पूजा होगी श्रीवास पंडित के घर में और सबसे पहले पूजे करेंगे हमारे गुरु जी। हमारे गुरु जी कौन है? उनके नित्यानंद प्रभु, वही पूजा के मूल मालिक रहेंगे। कहे नित्यानंद प्रभु जी गुरु कैसे? उन्होंने कहा नहीं कि यही कहा कि नित्यानंद प्रभु जी व्यास पूजा करें। क्यों पूजा करेंगे? अर्थात तो मैं उनकी पूजा करूंगा, ये भावना उनकी थी। नित्यानंद प्रभु जी के गुरु हैं लखीपति, उनके शिष्य हैं माधवेंद्रपुरी जी। नित्यानंद प्रभु माधवेंद्रपुरी जी को अपना गुरु बड़े गुरु भ्राता समझते हैं। अपने गुरु जी का संग बहुत कम मिला, वो अप्रकट हो गए तो इन्हीं के साथ में रहे। ये बड़े प्रेमी भक्त थे माधवेंद्रपुरी पाद जी, इसलिए इनको गुरु मानते थे। और माधवेंद्रपुरी जी के शिष्य बहुत से हुए, जिसमें ईश्वरपुरी पाद जी हैं उनके शिष्य महाप्रभु जी, इसलिए महाप्रभु जी अपने गुरु से भी परम गुरु हो गए, ये नित्यानंद प्रभु जी। इसलिए नित्यानंद प्रभु जी करेंगे, हम नहीं करेंगे पूजा, हम इनकी पूजा करेंगे, ये भावना थी। सब लोग आ गए, पूजा होने लगी। नित्यानंद प्रभु जी को कहा गया जी आप पूजा कीजिए, हूँ करते रहे। थोड़ी देर के बाद में महाप्रभु जी आए, लोगों ने कहा अरे नित्यानंद प्रभु कुछ अवधूत हैं, कुछ पगले हैं, ये पूजा किसी की बात सुनते नहीं, कर नहीं रहे। इसलिए महाप्रभु जी को कहा जी आप इनको समझा दीजिए। महाप्रभु जी ने श्रीपाद, श्रीपाद किसको कहते हैं? अपने से पूज्य लोगों को श्रीपाद कहते हैं, अर्थात श्री भक्ति पाद भी इसको कहते हैं। श्री माने यहाँ पर भक्ति, और भगवान के चरणों के चरण हैं, उनके चरणों को देने वाले हैं, भगवत चरणों को देने वाले, इसलिए इनको श्रीपाद कहा। आप पूजा कीजिए। उन्होंने इधर उधर देखा और माला उठाया और कृष्ण के गले में डाल, महाप्रभु जी के गले में डाल दिया। तो ये व्यास पूजा क्या हुई? कहीं नहीं, यही व्यास पूजा हुई। व्यास कौन है? मूल व्यास कृष्ण ही स्वयं है और ये स्वयं कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु जी है। इसे नित्यानंद प्रभु जी गुरु हैं, इसलिए उनके महाप्रभु जी के गले में झट माला दे दी। ये व्यास पूजा है। व्यास पूजा मैंने अपनी पूजा नहीं, कृष्ण की पूजा, उनके परिकरों की पूजा, पंचतत्व की पूजा, आचार्य पंचक की पूजा, कृष्ण पंचक की पूजा, गुरु परंपरा की पूजा, ये सब मिला करके 7 पंचक होते हैं उनकी पूजा। हम लोग के गुरु जी ने भक्ति विनोद ठाकुर के पद्धति के अनुसार में वहाँ पर किया था, जब तक वो रहे तब तक ही होता है। अभी हम लोग नवद्वीप में करते हैं, इधर समय नहीं होता, 4-5 दिनों तक वहाँ पर पूजा होती है, विशेष रूप से नवद्वीप में हो रही होगी, तो हम लोग संक्षेप में यहाँ पर करते हैं, इसलिए वो व्यास पंचक इत्यादि की पूजा नहीं कर पाते। समस्त गुरु वर्गों को सम्मान नहीं देने से भक्ति नहीं होती। प्रेम का फल गोलोक बैकुंठ में था, सुखदेव गोस्वामी उसको ले आ रहे हैं। कैसे ले आए? वो ऐसा फल था बड़ा मीठा, उसमें गुठली नहीं थी, केवल रस ही रस था। यदि ऊपर से गिर पड़ता तो वो फट जाता और रस चारों तरफ में बिखर जाता, किंतु कृष्ण से जब वह रस का फल जब चला तो ब्रह्मा जी ने उसे अपने ले लिया, ब्रह्मा जी से नारद जी ने उसे ले लिया, फिर नारद जी से नीचे व्यास जी ने उसे ले लिया, व्यास जी से सुखदेव गोस्वामी ले लिया, और इस जगत में आकर के सर्वत्र उसको बांट दिया। फल जैसा का तैसा रहा, सब जगत को देना भी हो गया, जगत उस प्रेम को पा करके अघा गया, पागल बन गया, किंतु फल जैसा का था पूरा का पूरा वैसा ही बना रहा, और अभी भी वो फल है। गुरु परंपरा के माध्यम से उसका प्रचार होता है, सभी लोग उसको टेस्ट कर सकते हैं। गुरु जी क्या मूल भावना ये है भाई, एक आसन निकल दो पूरी महाराजा से, वो आसन का एक आसन जाओ उसको बुला लो। तो गुरु जी का प्रधान कर्तव्य, प्रधान ये होता है लक्ष्य, गुरु उसी को कहते हैं। जगत में हम लोग भगवान को छोड़ करके बड़े दुखी हैं, हम अपने दुख को नहीं समझते। जैसे एक सुकर है, गधा है, एक पैखाना का कीड़ा है, ये लोग नहीं समझते कि हम लोग दुखी हैं, ये लोग समझते हैं कि हम लोग बड़े सुखी हैं, हम लोगों को घृणा आती है, वो लोग अपने को बड़े सुखी समझते हैं, टट्टी का कीड़ा भी अपने को बड़ा सुंदर समझता है, सुकर भी अपने को बहुत अच्छा समझता है, किंतु जो बुद्धिमान होते हैं लोग वो समझते हैं कि ये गंदा काम कर रहा है। इसी तरह से हम लोग अभी सोचते हैं कि हम वैभव में हैं, हम लोग धनी हैं, हम लोग शिक्षित हैं, हमारे संसार में हम बड़े सुखी हैं, किंतु भगवत भक्त लोग जो हैं वो लोग वो देखते हैं कि नहीं, हम लोग दुखी हैं, ये भी संसार वाले सभी दुखी हैं। आइए महाराज इधर आइए, गुरु जी का प्रधान कर्तव्य है, कर्तव्य नहीं वो उनकी ऐसी कृपा है, जो भगवान से बिछड़े हुए जीव संसार के जन्म मरण की माला में अनंत काल से घूम रहे हैं, अतिताप से ग्रस्त हैं, माता के गर्भ में आते हैं और फिर मरते हैं फिर आते हैं, और दुखी रहते तब मरने के समय में बड़े दुखी होंगे ही, इनके इन दुखों से दुखी होकर के गुरु उनको भगवान के सम्मुख लाता है और उनको भगवान का भजन करने के लिए परामर्श देता है, यही उनकी सबसे बड़ी कृपा है। यदि माया के जगत से यदि एक जीव कोई भी रुचि भगवान के तरफ में परिवर्तित कर दी जाए और वो भगवान का भजन करने लगे एक जीव को भी, तो अनंत कोटि अस्पताल बनाने से या अनंत कोटि स्कूल बनाने से, कॉलेज बनाने से, दूसरा पुण्य का काम करने से भी कोटि गुना ये श्रेष्ठ है एक जीव को भगवान के तरफ में मोड़ देने से। इसलिए गुरु जी की यही बड़ी सबसे कृपा होती है। हम लोग के गुरु जी बंगाल के किसी बड़े समृद्ध परिवार में वो आविर्भूत हुए थे। आज ही के दिन में 16 वर्ष की आयु में अपने गुरु जी के पास में भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी के पास आए। उस समय 16 वर्ष की उनकी उम्र थी। उस समय कॉलेज में पढ़ते थे। इनकी बुआ जी ने इनको लाया। प्रभुपाद जी को देख करके बड़े आकर्षित हुए और उनके उपदेशों को सुन करके उसी समय उन्होंने हरि नाम ले लिया। इसके बाद में फिर चले गए कॉलेज में। फिर 1918 में फिर गुरु जी के पास में आए। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के पास में ये नवद्वीप धाम परिक्रमा हो रही थी, उसी समय में आए। अभी नवद्वीप धाम परिक्रमा अगले 11-12 मार्च से आरंभ होगी, तो उसी समय में आए। प्रभुपाद जी ने स्नेह करके उनको रखा। उस समय मठ में बहुत थोड़े से लोग थे। उस समय सुनते हैं जो प्रभुपाद जी खोद ठाकुर जी की नरहरि प्रभु एक थे, वो आरती करते थे और प्रभुपाद जी कांसर बजाते थे। दूसरा कोई था नहीं कांसर और घंटा बजाने के लिए। तो उस समय में ये आए थे, बहुत प्राचीन है। उस समय में प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं बहुत से मठ स्थापन करूंगा भारतवर्ष में और 9 द्वीपों में 9 मठ स्थापन करूंगा। तो किसी ने उनसे पूछा जे आपके आप तो सोते हुए लाख रुपए का स्वप्न देखते हैं, आप कहां अकेले व्यक्ति कहां कहां मठ स्थापन करेंगे और विश्व में प्रचार करेंगे। तो उन्होंने इस बच्चे को देख करके कहा ये सब व्यवस्था करेगा और उसके सिर पर रख करके हाथ और उसको आशीर्वाद दिया। पीछे से इनका नाम विनोद बिहारी ब्रह्मचारी हुआ और पीछे से नाम हुआ श्री श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज। तो उसी समय से अब 1918 में जब आए तो फिर घर गए ही नहीं। देखो कैसी वैराग्यमान और कठोर हृदय से, किंतु साथ ही साथ में कैसे ये लोग बड़े उदार और नम्र और मधुर स्वभाव के होते हैं। एक दिन मायापुर में प्रभुपाद जी के नाम से पत्र आया, तुम्हारी मैया बड़ी बीमार है, अभी मरने वाली है, तुम जल्दी से आप जल्दी से हमारे बेटे को जरा भेज दें। प्रभुपाद जी ने इनको बुला करके कहा विनोद तुम्हारी मैया बड़ी बीमार है और तुम्हें स्मरण कर रही है, मरने के समय में तुम्हें देखना चाहती है, तो तुम जाओ, मैं आदेश देता हूं तुम चले जाओ। तो ये वहां से तो चले आए और आकर के एक घर के कोनों में छिप गए और 2 दिन तक प्रभुपाद जी के पास में प्रणाम करने के लिए भी नहीं गए, मन ही मन में प्रणाम किया। तीसरे दिन प्रभुपाद जी को याद आई, उन्होंने कहा अच्छा विनोद को मैंने कहा था जो तुम जाओ तुम्हारी मैया बीमार है, वो गया कि नहीं देखो तो खोजो। तो खोजने लगे लोग, तो खोजते 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 उनको घर में पाया छिपे हुए। प्रभुपाद जी ने कहा जाओ उसको पकड़ ले आओ। तो उन लोगों ने पकड़ करके उनको प्रभुपाद जी के सामने लाया। तो प्रभुपाद जी ने पूछा अरे विनोद तुमको मैंने कहा जो तुम्हारी मैया बीमार है तुम जाओ, तू गया नहीं? कहे प्रभु नहीं गया। तो क्यों नहीं गया? तो गया इसलिए नहीं कि आपने तो कहा जे चले जाओ। तो मैंने विचार किया कोटि कोटि जन्म के बाद में सदगुरु मिले हैं और यदि मैं जाऊंगा तो मैया मुझे देख करके रोएगी और अंत में यही कहे जे बेटा तुम घर में आ रहो विवाह शादी कर करके और जमींदारी सब देखो सुनो करो, घर हमारा बर्बाद न हो। तो मैं अंतिम उसकी इच्छा जान करके माँ की मैं कभी भी मना नहीं करूँगा, तो अंतिम इच्छा तो हमें पूर्ण करना पड़ेगा, इसलिए मैं घर में रह करके शादी विवाह करके हमको घर में रह जाना पड़ेगा और आपको मैं खो दूंगा, जन्म जन्मांतर हमारा नष्ट हो जाएगा, मैया का भी जैसे हुआ हमारा भी हो गया, एक सुजोग को मैं खो दिया। इसलिए ऐसा सोच करके सोचा जी अब जैसा भी होगा मैं आपके चरणों में ही रह करके भगवान की सेवा करूँ, वो तो आज न कल तो जाएगी ही, हम भी जाएंगे, सभी लोग जाएंगे, सदगुरु का पादराश्रय हम नहीं छोड़ेंगे, इसलिए नहीं गए। तो प्रभुपाद जी के आंखों में आंसू आ गए और कहा जी तुम ठीक किया। इसी तरह से गुरु महाराज जी प्रभुपाद जी की बहुत सी सेवा किया, हम लोग तो उतनी सेवा नहीं कर सकते, उनकी आभ्यंतरिक और बाह्यिक सब प्रकार की आंगिक और अभिलाषाएं सब उनकी मनोभिष्ट उन्होंने सेवा की। प्रभुपाद के जितने भी शिष्य थे सब एक एक से थे, उनमें से ये भी एक थे, ऐसे थे तेजस्वी व्यक्ति जो एक समय प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम एक विषय पर भाषण दो। जब परस्पर ब्रह्मचारी में मनोमालिन्य हो जाता था वो ऐसे समझेंगे नहीं, सभी की तरह के तो ब्रह्मचारी मठ में है, मुक्त तो कोई होकर के आया नहीं, दोस्त तो रहेंगे ही, थोड़ी थोड़ी से बातों के लिए अनाधिकारियों में कुछ झगड़ा विवाद हो सकता है बिना किसी कारण के, परमार्थ के लिए तो कोई झगड़ा होने की संभावना ही नहीं, क्यों होगा, लौकिक पदार्थों के लिए कभी कभी मान सम्मान इधर उधर की बातों में हो जाता है, तो कभी कभी हो जाता था। तो प्रभुपाद जी एक सभा करके उसमें ब्रह्मचारियों को कहते थे जो परस्पर में लड़ रहे हैं कि या विवाद कर रहे हैं या कुछ भी हो, तो कहते तुम इनका गुण गाओ और तुम इनका गुणगान करो, इनके क्या क्या गुण हैं भजन के आप बतलाओ, और उनसे कहते थे जो आप इनके भजन का गुणों को बतलाएं। प्रभुपाद जी ने एक बार इनसे कहा जो परमानंद का तुम कुछ गुण बखान करो। परमानंद ये कौन है? प्रभुपाद जी के बड़े प्रिय शिष्य हैं, वो ऐसे शिष्य थे जो रात में 12 बजे 1 बजे 2 बजे भी प्रभुपाद सोए रहेंगे और ये किसी काम से बाहर गए हैं तो यदि लौट करके आएंगे प्रभुपाद खोलूं प्रभुपाद खोलूं प्रभुपाद खोलूं, उनका धक्का दरवाजा दे करके उनको उठा ले। सब कह रही प्रभुपाद जी सो रहे हैं, इनको उठाता है क्यों, ये कोई सेवा है? तो वो किसी की बात नहीं, उनके घर में ही सोएंगे और उन्हीं के पास में रह करके उनकी सेवा करते थे। और हमारे गुरु जी और ये परमानंद एक बिछौने पर खाते, कभी कभी एक बर्तन में से ऐसे ही परस्पर खा लेते और बड़ा इन लोगों में स्नेह था। तो प्रभुपाद जी ने इनसे कहा कि तुम परमानंद का कुछ गुणगान करो। प्रभुपाद जी सबको आप कहते थे, किसी को तुम नहीं कहते थे। अब प्रभुपाद ने एक स्पेशलिटी ये थी कि किसी को किसी सेवा के लिए आदेश नहीं देते थे, कहते थे ये काम करना अच्छा है, ये होता तो अच्छा है, बस, और किसी को कोई भी आदेश नहीं देते। जैसे हम लोग कहते हैं ना किसी काम के लिए आदेश और नहीं करता है तो बिगड़ जाते हैं और कहता है तो प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी कभी किसी को आदेश नहीं देते थे और कभी किसी को तुम नहीं कहते थे, आप कहते थे अपने समस्त शिष्यों को, यहाँ तक कि कहते थे हमारे विपद तारण बंधु हैं अपने शिष्यों के लिए, शिष्य लोग प्रणाम करते थे इसको सुनकर, इसलिए तो वो जगत गुरु हैं। तो केवल परमानंद प्रभु को, हमारे गुरु जी को और एक वैष्णव दास थे, बस तीन को तुमी तुमी या तुई मूर्ख ढोकला और क्या क्या सब कहते थे, इन लोगों को खूब शासन भी करते थे। तो वो गुरु जी हमारे परमानंद प्रभु के लिए कहा अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम जनमित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म ये कह करके वंदन किया। ये परमानंद परमानंद की मूर्ति स्वरूप है। कैसे परमानंद की? आनंद के जितने भी गांव वाले हैं और पूर्ववासी हैं, पशु पक्षी कीट पतंग सब जब जिनके मित्र हैं, ये पर ब्रह्म परमानंद स्वरूप जो हैं, तो उनके ये दास हैं, ये भी परमानंद स्वरूप हैं। जब तक कि साधक अपने आराध्य के समकक्ष नहीं होगा, तब उसकी पूजा नहीं कर सकता आराधना। इसीलिए तो दास्य से सख्य श्रेष्ठ है, जो दोनों गले में मिलकर के सेवा करते हैं। फिर मैया बीच में आ जाती है, और फिर मैया के बाद में फिर आ जाता है वही, अब सखा रस था, वो सखी रस आ गया। सखा लोग कभी नहीं कहेंगे जब तू हमारा पैर दबा दे, किंतु सखियां तो ऐसी हैं ना ढीठ, वो सब प्रकार की सेवाओं में उनको नियुक्त करती हैं, और कृष्ण भी मंत्र मुग्ध होकर के सब सेवाओं को करते हैं ऐसी। तो ये ब्रज के ब्रज में ऐसा ये रस है, ब्रज रस, और उसकी आनंद के परमानंद की मूर्ति ये सब है। और उनको और एक गुरु परमानंद माधवम मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिं जब कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव। परमानंद वहां पर गुरु वंदना से आरंभ करके, इसी तरह से शास्त्र में जहां जहां परमानंद और परम है, ब्रह्म है, उसको सबको मिला करके आनंदमयो परमानंदमयो अभ्यासात इत्यादि ले करके करीब करीब आध घंटा तक इतना सुंदर भाषण दिया, और वो भी दर्शन शास्त्र के ऊपर में। प्रभुपाद बड़े प्रसन्न होकर के कहा, उसी सभा में बोले, हमारी जितने वेदांत के ग्रंथ हैं जिसको हम बड़ी मुश्किल से संग्रह किए हैं, अब सब तुमको देता हूँ, हम तो देखता हूँ कि तुम ही इसका अध्ययन करो। तो गुरु जी को दे दिया, इनका तब से नाम वेदांत ही पड़ गया। ऐसे ये थे प्रभुपाद के अपरकट के बाद में। आप लोगों ने सब सुना होगा, पिष्ट पेशन कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक दो मिनट कहूँगा। अभी अभी बहुत काम है, आरती उरती करनी है, अभी सब वैष्णव लोग अभी उनको प्रसाद भी देना है। तो प्रभुपाद के अप्रकट होने के बाद में समाज के कुछ लोग प्रभुपाद के प्रति बड़े क्रोधित थे। प्रभुपाद ने बतलाया, उनका उपदेश था कि देखो, जन्म से ब्राह्मण होकर के नहीं आता, जन्म से गोस्वामी नहीं होते, जिनमें गुण है वही गोस्वामी है, और जिन लोगों में भगवत सेवा की का गुण नहीं है वो गोस्वामी नहीं है। गोस्वामी गो माने इंद्रिय, इंद्रियों के जो स्वामी हैं उनको जो वशीभूत कर लिया है वो गोस्वामी शब्द वाच्य है। वो चाहे किसी भी कुल में आए हों न क्यों, वही गोस्वामी शब्द वाच्य। इसलिए सनातन गोस्वामी, हमारे रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, लोकनाथ दास गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, इसके बाद में हमारे और सब गोस्वामी, तो ये लोग गोस्वामी कौन है जो भगवान का भजन करते करते संसार के प्रति परम विरक्त हो चुके हैं और अपने इंद्रियों को अपने वशीभूत बना रखा है, ये सब गोस्वामी शब्द वाच्य हैं। बाकी जन्म से उसी का लड़का गोस्वामी नहीं होगा, यदि वो शराब पीता है, यदि भगवान का भजन नहीं करता तो गोस्वामी नहीं है। गोस्वामी वही है जो भगवान का भजन करता है, अपने समस्त इंद्रियों को कंट्रोल करके करता है। और जाति से ब्राह्मण नहीं होते हैं, गुण से ब्राह्मण होते हैं। चतुर्वर्णम व्याशिष्टम गुण कर्म भागवत, जिनमें जो गुण देखे जाएं, जो कि शास्त्रों में लिखे हैं, वो गुण जिनमें है उसके अनुसार में जाति निरूपित होगी। जन्म का, पूर्व जन्म का संस्कार, इस जन्म के उसके विचार, ये सब मिला करके और तब जाति निरूपण की जाएगी, ये ब्राह्मण है कि वैश्य है कि शूद्र है कि क्या है। तो जस जल लक्षणम पुंसो वर्णाभिव्यंजकम यदा नत्रापि दृश्यते तत्तेन विनिर्देशे, जिसमें जो गुण है वो दिखाया जाए। ब्राह्मण का लड़का यदि शराब बिक्री करता है, शराब पीता है, तो वो ब्राह्मण नहीं है। वो हमारे रावण के पिताजी क्या नाम था, विश्रवा, वो ब्राह्मण था, कुबेर जी का वो भाई लगता था रावण, वो ब्राह्मण है, किंतु रावण को ब्राह्मण नहीं कहा जाता, कुंभकर्ण को ब्राह्मण नहीं बनाया जाएगा, किंतु उनके भाई विभीषण जी ब्राह्मणों के भी ब्राह्मण हैं। ये विचार होना चाहिए। जन्म से सभी बच्चे एक साथ में आते हैं, एक शूद्र का भी लड़का, एक ब्राह्मण का भी लड़का, उस समय यह निर्णय नहीं कर सकते ये शूद्र है कि ब्राह्मण है कि वैश्य है। इसलिए जिनमें जो जाति का गुण है, यदि गोस्वामी का गुण है, वैष्णव वह है, तब तो वो ब्राह्मण है, नाम न था। इसलिए यह विचार सुन करके नवदीप के और वहाँ आसपास के जितने ब्राह्मण थे और जितने वैष्णव लोग थे, नामधारी सहजिया, वो सब इन पर बिगड़ गए, बिगड़ करके प्रभुपाद को मारने के लिए, जान से मार डालने के लिए चेष्टा की। और दूसरी बात, नवदीप के जितने ब्राह्मण लोग और गोस्वामी लोग थे उस समय के तथाकथित, उन लोगों ने मायापुर में देखा कि ये तो मायापुर तो महाप्रभु का जन्म के रूप में प्रकट हो रहा है, इसलिए हम लोग नवदीप में को ही अभी तक मान रहे थे कि ये मायापुर है, तो ये गड़बड़ कर देगा, अभी तो प्रचार कर देगा विश्व में, सभी लोग उसी को मायापुर को मानेंगे महाप्रभु का जन्म स्थान, इसलिए उनके विरोधी हो गए। इसलिए प्रभुपाद जी परिक्रमा कर रहे थे, उस परिक्रमा में उन्होंने आक्रमण किया और उनको जान से मारने की चेष्टा की। उस परिक्रमा में हाथी भी चल रही थी और कम से कम हजारों लोग थे, गर्म पानी उन पर फेंका, बड़े बड़े पत्थर फेंके गए, सोडा बोतल इत्यादि सब फेंका गया, सब भीड़ तितर बितर हो करके चली गई, पुलिस भी सहारा के लिए नहीं आई। उस समय में प्रभुपाद किधर गए कोई देखा, सब इधर उधर, सब अपने अपने प्राण छिपाने के लिए भर। गुरु महाराज जी हमारे प्रभुपाद जी को लेकर के एकले चुपके से एक घर में घुस गए, घर वाले बड़े दयालु थे, उन्होंने घर में स्थान दिया और प्रभुपाद जी का कपड़ा अपने पहन लिया सन्यासी का, और उनका दंड ले लिया और अपना सफेद पोशाक प्रभुपाद जी को पहना करके, और किसी के साथ में उनको मायापुर भेज दिया और अपने आप कुछ देर तक घर में रहे। इसके बाद में जब सब भीड़ छट गई, इसके बाद में इस प्रकार से ये बाहरी सेवा यद्यपि मालूम पड़ती है, किंतु गुरु के प्रति यदि ऐसी निष्ठा नहीं रही तो शिष्य क्या रहा। इसलिए सब प्रकार से गुरु की जो सेवा कर सकता है, उसकी मनोकामना को जो पूर्ण कर सकता है भाई, वही सच्चा शिष्य है, अन्यथा नहीं। ये सब विषय में सामर्थ्य भी थे। पीछे से प्रभुपाद के जितने भी विचारों के विरोधी हुए, सबको एक एक करके दमन इन्होंने किया। अभी बहुत समय चला जाएगा इसके बतलाने के लिए। ये निम्बार्क संप्रदाय के लोग, उन्होंने महाप्रभु जी का कुछ विचारों के लिए उन्होंने ये बतलाया कि महाप्रभु जी केशव काश्मीरी से हार गए थे और केशव काश्मीरी ने इनको अपना शिष्य बनाया और कृष्ण जुगल का उन्होंने मंत्र दिया। ये शास्त्रों से विपरीत है। केशव काश्मीरी को ही उन्होंने परास्त करके और उसको उन्होंने कृष्ण भजन करने के लिए उत्साहित किया, प्रेरणा दी, और वो वृंदावन में आकर के उन्होंने भजन किया, किंतु इन लोगों ने उल्टा लिखा। बस गुरु महाराज जी उनके विरुद्ध में हिंदी में, उस समय हमारी भागवत की पत्रिका, उसमें उन्होंने लिखवाया प्रबंध, और लिखवाने उन्होंने लिखा, निम्बार्क नाम का कोई व्यक्ति नहीं था ऐतिहासिक, निम्बादित्य हम लोगों के चारों संप्रदाय में से एक थे, उन्होंने कृष्ण के भजन करने के लिए प्रचार चारों तरफ में किया था, निम्बार्क नाम का कोई व्यक्ति नहीं हुआ, ये जाली व्यक्ति हैं, और सब तरह से प्रमाण दे करके लिखा। अंत में गुरु जी के नाम से उन्होंने 4-5 लाख रुपये का मानहानि का केस का दावा किया। उसमें वकीलों ने उनको परामर्श दिया, केशव महाराज के तुम लोग जानते नहीं हो, वो सांप को केंचुए को पकड़ने के लिए यदि उसमें हाथ डालोगे सांप काट देगा, मरोगे, इनको छेड़ो मत नहीं तो बड़ा भारी मुश्किल हो जाएगा, वकीलों के कहने से फिर उन्होंने अपना उठा लिया। इसी प्रकार से और भी कितने साजियाओं के विरुद्ध उन्होंने लिखा और सबको दुरुस्त किया। जो जो प्रभुपाद के विरोधी हुए सब लोगों का दमन किया। प्रभुपाद का विचार सारे भारतवर्ष में उन्होंने किया। हमारे बंगाल में तो है ही है, बाहर में बहुत से, जैसे कि हमारे गुरु महाराज जी के जो सतीर्थवर हैं, जैसे पूज्यपाद गोस्वामी महाराज, पूज्यपाद बन महाराज, पूज्यपाद माधव गोस्वामी महाराज, एक एक से सकल सभी हमारे स्वामी महाराज जी विश्व में समस्त प्रदेशों में देशों में उन्होंने प्रचार किया, शिक्षक किया। ये सब प्रभुपाद के अपने गण हैं और सब प्रकार से उनकी सेवा की है। आज उन्हीं के बदौलत हम लोग आज सर्वत्र प्रचार भी कुछ कुछ कर रहे हैं। और हम लोग अभी कुछ प्रयास हो रहा है, यहाँ राधा कुंड के कोई अनंत दास बाबा जी हैं, राधा रमण केहरा के पुरुषोत्तम हैं, और कुछ लोग हैं नवदीप मायापुर शहर ही केकड़ा का माठ रामचंद्रपुर, यही मायापुर की जन्मभूमि है, इसके लिए बड़े जोर से लगे हुए हैं, तरह तरह से मीटिंग इत्यादि कर रहे हैं, पंपलेट छपा रहे हैं। ये प्रभुपाद के और हमारे गुरुजी और सब लोगों के विपरीत है। यथार्थ उनका जन्म है, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है, भक्ति रत्नाकर में भी ऐसा लिखा है, चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत सब में लिखा है, गंगा के पूर्व तट पर ही महाप्रभु जी का जन्म हुआ था, वहीं पर मायापुर है। इसके लाखों लाखों प्रमाण हैं। इसीलिए हमने सोचा, हमारे पास में 3-4 पंपलेट आए तो हमने सोचा जो एक समय है अपने गुरु वर्गों की कुछ सेवा करनी चाहिए, यही मनोभीष्ट उनकी सेवा है। इसलिए मैंने झट तुरंत एक कुछ लिखा और उसको प्रकाशित हम लोग कर रहे हैं। हिंदी भाषा में महाप्रभु जी का जन्म स्थान परिक्रमा और गौड़ मंडल के जितने भी हमारे गौड़ीय वैष्णव के तीर्थ हैं उसको मैंने लिख करके अभी छपवा रहा हूँ। शायद वो परिक्रमा के पहले वो छप जाए तो उनके कर कमलों में दे करके महाप्रभु जी की अभीष्ट एक सेवा करने की इच्छा। तो इसी तरह से हम लोग भी सचेत रहें, अच्छी तरह से भजन करें, अपने अपने गुरु के प्रति ऐसी निष्ठा हमारी रहे और सर्वत्र ही भगवान की भक्ति का प्रचार हो, यही गुरु की सबसे बड़ी मनोभीष्ट सेवा है। कहना तो अभी बहुत कुछ था, अभी शाम को हम लोग बैठेंगे, किंतु अभी हम लोग पुष्पांजलि भी प्रदान करेंगे, अभी भोग राग भी लगा हुआ है, इसलिए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। यह हमारा गुरुवर्ग, हमारे जो गुरुवर्ग हैं, हमारे कृष्ण से लेकर के आज तक के हमारे, इनके पास में रस का खजाना है, सिद्धांत का खजाना है। ये हमारे ऊपर में ऐसी कृपा करें कि जैसे हमारे गुरु जी हैं या और सब लोग हैं उनकी गुरु निष्ठा है, ऐसे हमारे अंदर में भी गुरु निष्ठा है, आप लोगों के अंदर में भी ऐसी गुरु निष्ठा है, और हम भी उनके मनोभीष्ट सेवा को आगे के लिए बढ़ाएं और हम लोग उसका प्रचार और प्रसार कर सकें। यही प्रार्थना करके अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। हमारे पूज्यपाद भक्ति प्रसाद पुरी महाराज जी हमारे चैतन्य गौड़ीय मठ के सेक्रेटरी हैं, बड़े योग्य और पुराने हमारे बंधु भी हैं, 2-4 शब्द हमारे कह करके और पुष्पांजलि प्रदान करें। ओखने तैयार अवधि के भोग
गुरु जी का आविर्भाव हुआ। आप लोग कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? दो कल भी तुम लोग कहना तो समझ गुरु महाराज जी का जब आविर्भाव हुआ तो 15-16 दिन के जब थे तो एक चील उनको उठा ले गई आकाश मार्ग, सब लोग रोने पीटने लगे। उस समय फिर चील उनका रोना देख करके और फिर वहीं पर पासी में पानी का एक तालाब था, उसी जगह ऊपर से चील ने उनको पानी के ऊपर में रख करके फिर उड़ गए। लोग देख रहे थे जैसे चील ले आ रही है बच्चे को, तो दौड़ करके गए और डूबने के पहले ही उसको उठा। जब बोलने चालने लायक हुए तो बोल नहीं पाते थे, 3-4 वर्ष की आयु तक ये बोले ही नहीं, रोते भी नहीं थे, बोलते भी नहीं थे। बहुत तरह की वैद्यों को दिखलाया और ये लड़का गूंगा हो जाएगा, सुंदर तो था, उसका लड़का का नाम था ज्योत्सना, बहुत ही गौर रंग का शेषाई देखा, तुम्हें देखे छो तो वृद्धावस्था रंगना है, तुम्हें देखे तो झलक दर्शन कर, झलक दर्शन कर। बहुत ही कोमल हृदय भी था, कोमल उनकी त्वचाएं थी, एकदम गौर वर्ण, इसलिए ज्योना या ज्योत्सना उनका नाम रखा। तो 3-4 वर्ष जब बोले नहीं तो एक दिन इनके घर में एक फकीर आया, उधर मुसलमान अधिक रहते हैं इसीलिए वहां पर अब बांग्लादेश हो गया मुसलमानों का, एक फकीर आया इनकी मैया को देख करके कहा जैसे तुम्हारा लड़का बोलता नहीं है ना, आता नहीं बोलता है, उसे ले आओ तो देखें। तो उसने देखा, अजय ऐसे नहीं बोलेगा, तुम्हारे गांव में सबसे नीच जाति हाड़ी
बागदी
वो नीच जाति की जो होती है उसी के घर में